नमस्कार प्रिय श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दूसरा इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि एजिकिया ने मंदिर के द्वार खोले और उसको साफ करवा कर आराधना का पुनः स्थापन किया। उसने फसह के पर्व में उत्तरी राज्य के अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया और पर्व ऐसा आनंद के साथ मनाया जो उन्होंने 2 सप्ताह तक मनाया। मेरे मित्रों, इसके बाद वह अपने पिता द्वारा स्थापित मूर्ति पूजा से राष्ट्र को मुक्त करवाने के काम में लग जाता है। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि हम दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ निकालिए दूसरे इतिहास की पुस्तक 31 अध्याय उसके 1 पद। दूसरे इतिहास की पुस्तक 31 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, जब वह सब हो चुका तब जितने इसराइली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एप्रेम और मनस्से में की लाठों को तोड़ डाला, अशेरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों को और वेदियों को गिरा दिया और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इसराइली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुंचे। मेरे प्रियो, उस राष्ट्र में फसह के बाद एक महान धार्मिक क्रांति आई जिसका अगुआ हिजकिया ही था। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 31 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, और सारे यहूदा में भी हिजकिया ने ऐसा ही प्रबंध किया और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था, और जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतार्थ भी हुआ। मेरे प्रियो, आइए अब हम हिजकिया के जीवन का निकट निरीक्षण करके देखें कि वह कैसा मनुष्य था। सबसे पहले वह विश्वासी जन था। जब मैं कहता हूँ कि विश्वास, तो मेरा अभिप्राय उस विश्वास से कहीं अधिक है जिसे हम प्रायः विश्वास कहते हैं। मेरे मित्रों, मुझे किसी विशेष शिक्षा के मानने वाले ने कहा कि उद्धार पाने के लिए हमें 4 बातों की आवश्यकता है। मैंने उससे पूछा, आपके विचार में उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपकी उन 4 बातों का उल्लेख तो नहीं करूंगा, परंतु उनमें एक विश्वास भी था। मेरे मित्रों, मैंने उससे कहा, मैं आपकी 4 में से 1 भी बात से सहमत नहीं हूं। उसे अचंभा हुआ। उसने कहा, आप विश्वास से तो निश्चय ही सहमत होंगे, क्योंकि विश्वास पर तो आप प्रचार करते हैं। मैं जानता हूं, मैंने कहा, विश्वास की मेरी समझ वह नहीं जो आपकी समझ है। आप कहते हैं कि यदि कोई यथाश्रम विश्वास करे तो उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, आज विश्वास का जो विचार है वह मुझे बचपन के मेलों का स्मरण करवाता है। वहां पुरुषों के लिए बल परीक्षण का एक उपकरण होता था, उसमें एक पैमाना था। आपको हथौड़े से एक वजन पर प्रहार करना पड़ता था कि वह उछलकर ऊपर आ जाए और घंटी बजे। अब यदि वहां कोई अपनी मित्र लड़की के साथ आता तो वह अपना कोट उतारकर हाथ में थूक लगाकर हथौड़ा पकड़ता और भरपूर शक्ति से हथौड़ा घुमाता। वह पूरी ताकत लगा देता कि घंटी बजे। उसका परिश्रम सच में यथाशक्ति होता था। प्रायः लोग सोचते हैं कि विश्वास ऐसा ही है। मेरे मित्रों, उनका कहना है कि यदि मैं यथाश्रम विश्वास करूं। विश्वास किसी बात की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं है। विश्वास भावनाओं में नहीं होता है। यह एक प्रवीण तथ्य नहीं है। मेरे मित्रों, विश्वास आत्मा में पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मनुष्य की आत्मा में उत्पन्न विश्वास है। जब पत्रस ने मसीह यीशु में अपने विश्वास का अंगीकार किया, तब प्रभु ने उससे कहा था, मत्तीरची सुसमाचार 16 अध्याय के 17 पद में, हे शमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। जी हाँ, विश्वास अपना गुण नहीं है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास एक साधन है, मसीह उद्धार करता है और वही विश्वास का करता है। मेरे प्रियो, स्पर्जन ने कहा, यह आपके द्वारा मसीह को पकड़ना नहीं है जिससे आपका उद्धार हो, मसीह ही है जो आपका उद्धारक है। यह आपका विश्वास भी नहीं है, जबकि वह साधन अवश्य है। यह केवल मसीह का लहू और उसका श्रेय है। विश्वास का श्रेय नहीं है, यह पर्याप्त विश्वास का विषय भी नहीं है। आप गलत बात भी विश्वास कर सकते हैं। अनेक शहीद हैं जो केवल अंधविश्वास के कारण जान दे चुके हैं। मेरे प्रियो, उनका विश्वास गहन हो सकता है, परंतु गलत बात या गलत व्यक्ति पर। सच्चा विश्वास कुछ नहीं लाता है कि सब कुछ ले जाए। विश्वास कहता है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की सहायता कर। विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करता है। मेरे प्रियो, अब शेष अध्याय 31 में हम हिजकिया के और भी सुधार कार्य को देखते हैं। आपके जीवन में भी सुधार होगा जब प्रभु यीशु आपका उद्धार करेगा। वह आपका जीवन पूर्णतः बदल देगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि जब लकवे का रोगी यीशु के पास लाया गया, तब यीशु ने उससे कहा था कि उसके पाप क्षमा हुए। शास्त्री और फरीसी इस बात पर अप्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह ईश निंदा है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे हम मत्तीरची सुसमाचार 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। जी हाँ, यीशु को वे कोई जवाब नहीं दे पाए। स्पष्ट है कि एक काम करना उतना ही आसान है जितना कि दूसरा काम, परंतु यह दोनों ओर कठिन भी है। केवल परमेश्वर ही है जो दोनों काम कर सकता है। केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। परमेश्वर ही किसी रोगी को इस योग्य बना सकता है कि वह अपनी खाट उठाकर चले। लुका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 22 से 24 पद में यीशु ने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। मेरे मित्रों, यदि मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं, तो आप अपनी खाट उठाकर चल दिए हैं। आप अपने पुराने जीवन से अलग चल दिए हैं और आप अपने पुराने पाप से दूर चल दिए हैं। आप बदल गए हैं। यदि आप अलग नहीं हुए हैं, तो आप अभी भी पाप के कारण शून्य हैं, लकवे के पीड़ित हैं। हिजकिया परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखने वाला मनुष्य था, और इस कारण उसका जीवन बदल गया था। अब वह अपने राष्ट्र का मन बदल रहा है। मेरे प्रियो, हिजकिया विश्वासी ही नहीं, प्रार्थनाशील मनुष्य भी था। अध्याय 32 में ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने यहूदा राष्ट्र को परमेश्वर की आशीषों के प्रकाश से निकालकर विनाश के अंधकार में प्रवेश होने दिया। अश्शूर सन्हेरीब फिर आया और वह यरूशलेम पर आक्रमण करने की तैयारी में था। उसने निवासियों को डराना आरंभ किया। आइए हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसका 1 पद। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। हिजकिया ने नगर को दृढ़ तो बनाया था, परंतु उनका विश्वास परमेश्वर पर ही था। उसने अपनी प्रजा को भी परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे मित्रों, हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं कि या बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसकी संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। जी हाँ, सन्हेरिब ने अपने प्रतिनिधि भेजकर जनता को भयभीत करवाना और उनके साहस को तोड़ने का प्रयत्न किया। परमेश्वर में उनके विश्वास को डगमगाना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भुलाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका है। यह निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। मेरे मित्रों, सन्हेरीब ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पत्र भी भेजा। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इसराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपने अपने प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। मेरे मित्रों, दूसरे राजाओं का वृतांत इसके बारे में अधिक लिखता है। पत्र पाकर हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर के समक्ष वह पत्र रख दिया। उसकी उत्कृष्ट प्रार्थना दूसरे राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय उसके 14 से 19 पद में व्यक्त की गई है। मेरे प्रियो, हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय के 20 पद में आगे पढ़ते हैं, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर की ओर दुहाई दी। जी हाँ, हिजकिय्याह सहायता के लिए परमेश्वर पर निर्भर था और परमेश्वर ने उसे चमत्कारी मुक्ति दिलाई। दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। यूं यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। जी हाँ, हम आगे देखते हैं हिजकिय्याह का रोग। दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसके 24 पद में आगे लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरा चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। मेरे मित्रों, दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा है कि हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करके रो रो कर प्रार्थना की। मेरे मित्रों, मैं उसकी मनोदशा समझ सकता हूँ। जब डॉक्टर ने किसी एक मरीज को बताया कि उसे कैंसर है, तब उसका दिल दहल गया था। वह अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सच जानने के बाद भी वह जीवित रहने का आश्वासन दे पाएगा या नहीं। मेरे मित्रों, कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में जाते हैं और कुछ को पता नहीं होता है कि उसका परिणाम क्या होगा। जी हाँ, पलंग तक पहुंचने में नर्स उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे दुर्बल हो चुके हैं। बहुत से मरीज शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं थे। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं और नर्स से पूछते हैं, क्या वह बीमार है, क्या वह मर जाएगा, क्या वह जीवित रहेगा, और बहुत सारे प्रश्न आते हैं। डर के मारे लोगों की जान निकल रही होती है। वहां एक मसीही नर्स थी, उसने मुस्कुरा दिया। उसने उस मरीज से पूछा और निवेदन किया कि वह उसे कुछ समय अकेले में छोड़ दे। तब हम देखते हैं कि वह मरेज दीवार की ओर मुंह करके ठीक वैसे ही जैसे हिजकिय्याह ने किया था और रो रो कर परमेश्वर को पुकारा और कहा कि प्रभु वह मरना नहीं चाहता है। मेरे मित्रों, मेरा यह विश्वास है कि जब हम रोगग्रस्त हो तब हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, वरन अन्यों से भी प्रार्थना करवाना चाहिए। मैं विश्वास द्वारा चंगाई पर विश्वास रखता हूँ, परंतु विश्वास द्वारा चंगाई करने हारों में नहीं। मित्रों, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर चंगा करता है। अस्तु, मेरी एक जानकार महिला ने मुझे पत्र लिखा, मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हैं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वह आपको घर ले जाए। मैंने शीघ्र ही उसे लिखा, देखिए आप यह काम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। उससे कहने का प्रयास मत कीजिए कि मुझे कैसा लगता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। मैं भी जीवित रहना चाहता हूँ। मैं जितना जी सकूँ उतना जीना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, हिजकिय्याह की भी यही स्थिति थी। केवल परमेश्वर ही उसकी सहायता कर सकता था। जब उसने दीवार की ओर मुंह किया तब उसने परमेश्वर को स्मरण दिलाया कि वह सत्य एवं शुद्ध मन से उसके सम्मुख रहा है और उसकी दृष्टि में जो उचित है उसने वही किया है। उन्होंने उसके फोड़े पर अंजीरों की एक टिकिया बांधी। संभवतः वह कैंसर था। जो भी था, परमेश्वर ने उसका रोग हर लिया अर्थात ठीक कर दिया और उससे 15 वर्ष और जीवन दान मिला। दूसरे इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय उसके 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। मेरे मित्रों, यहूदा की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, परंतु अब वह फिर धनवान देश हो गया था। दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय के 27 पद में लिखा है, और हिजकिय्याह को बहुत ही धन और विभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। जी हाँ, उसने बड़ी भारी मूर्खता की कि बेबीलोन के राजदूतों को अपना भंडार दिखा दिया, जिसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 से 19 पद में देखते हैं। इस घटना पर परमेश्वर ने कहा, जिसे हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, तो भी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कारों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। मित्रों, उचित नहीं कि मैं ऐसा कहूं, परंतु हिजकिय्याह उसी समय मर जाता तो अच्छा होता। उसे परमेश्वर ने जीवन दान दिया तो उसने 3 मूर्खता के काम किए। उसने बेबीलोन के राजदूत को अपना वैभव दिखाया, जिसके कारण भविष्य का संकट निश्चित हो गया। उसके पुत्र उत्पन्न हुए, मनुष्य जो एक महादुष्ट राजा हुआ। उसने अपने अंतिम समय में उद्दंडता और दुस्साहस दिखाया। उसका मन घमंड से भर गया था। दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इसका कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। मित्रों, आप देख रहे हैं ना कि यदि हिजकिय्याह रोग अवस्था में मर जाता तो अच्छा होता। वह वास्तव में परमेश्वर का नियुक्त समय था। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं अति सावधान रहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बचाया है और मैं उसे लज्जित करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यह एक अद्भुत अध्याय है। हमारे पास एक अद्भुत स्वर्गीय पिता है और एक अद्भुत शिक्षा हम सब के लिए है। आगे हम देखते हैं हिजकिय्याह की मृत्यु। दूसरे इतिहास के पुस्तक 32 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशाया नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, मैं जागृति के विषय कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे विचार में यह अति महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान रखें कि परमेश्वर जागृति के विषय अपनी प्रभुता रखता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 8 पद में कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता है कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मेरे मित्रों, केवल परमेश्वर ही जागृति भेज सकता है। इसमें परमेश्वर की परम इच्छा चलती है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा यह काम करता है। परमेश्वर किसी का नौकर नहीं है कि घंटी बजाकर उसे आज्ञा दे। मेरे प्रियो, मैं कुछ लोगों से प्रार्थना में परमेश्वर की आज्ञा देते हुए सुनता हूँ। हम परमेश्वर को आदेश नहीं दे सकते। आपको कर्मेल पर्वत पर एलिय्याह का अनुभव स्मरण होगा। बाल पुजारी चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे परंतु स्वर्ग से आग नहीं बरसाया गया। तब एलिय्याह ने पत्थर जमाए और लकड़ियां रखी तथा उस पर बलि सजाई। उसने उस पर पानी डाल दिया। अब उसने प्रार्थना की। वह भी हमारी जैसी भावनाएं रखने वाला व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से कहा, हम बस यही कर सकते हैं कि पत्थर जमा कर उन्हें व्यवस्थित कर दें। हम लकड़ियां सजाकर उस पर बलि का सामान रख सकते हैं परंतु तुझे आग भेजना होगा। वह जानता था परमेश्वर आग गिराएगा। परमेश्वर ने तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई। मेरे प्रियो, इस समय हमारे देश में आत्मिक अभियान चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि वह केवल युवा वर्ग के लिए है परंतु देखता हूं कि उसमें युवा दंपत्ति भी है। युवा दंपत्ति अपने बच्चों को दूर होता देख रहे हैं। उन्हें यह बोध हो गया है कि उनके पास समस्याओं का उत्तर होना आवश्यक है। मुझे एक युवा पिता ने कहा, मैं सोचता था कि मैं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज लूंगा परंतु मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। जी हाँ, आज परमेश्वर के वचन की ओर उन्मुखता को देख मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। मुझे आज हर जगह यह देखने को मिलता है। मेरे मित्रों, स्पष्ट कहूं तो मैंने अपनी सेवा में कलीसिया में ऐसे होते नहीं देखा है। यह अभियान कलीसिया से बाहर है। मैंने इसे देशव्यापी सभाओं में देखा है। युवा वर्ग वरन वयस्क भी सभाओं में आते हैं। परमेश्वर के वचन में उसकी सच्ची रुचि होती है। कुछ पास्टर और धर्म के अगुए उनसे लाभ उठाना चाहते हैं, अतः वे युवा वर्ग के मन में व्यर्थ की बातें डाल रहे हैं। वे बाइबल अध्ययन की अपेक्षा उन्हें रॉक संगीत सिखा रहे हैं। वे उन्हें सब कुछ दे रहे हैं परंतु परमेश्वर का वचन नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु ने पूछा था लुका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11 पद में, तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मछली मांगे तो मछली के बदले में उसे सांप दे। वह निश्चय ही उन्हें रॉक संगीत नहीं देगा। वह उन्हें परमेश्वर का वचन देगा। मेरे प्रियो, मैं देखता हूं कि वे मेरे रेडियो कार्यक्रम को सुनते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं पुराने विचारों का हूं। मैं परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों सुनाता हूं। आप मेरा कार्यक्रम क्यों सुनते हैं? उनमें से एक ने कहा, हम आपका कार्यक्रम सुनते हैं क्योंकि आप उसे वैसा ही सुनाते हैं जैसा वह है। मैं तो ऐसा ही प्रचार करना जानता हूं और वर्षों से मैं ऐसा ही प्रचार कर रहा हूं परंतु किसी ने सुना है और किसी ने नहीं। अब उन्होंने सुनना आरंभ किया है। क्या हम आत्मिक जागृति की सीमा पर हैं? मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर जागृति भेजे। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि जागृति आई तो परमेश्वर ही उसका भेजने वाला होगा। मैं अपना वर्षा कवच निकाल रहा हूं कि परमेश्वर आशीषों की वर्षा करेगा। मित्रों, मैंने अपने युग में आत्मिक जागृति नहीं देखी है, इसलिए मैं इसे देखने की जिज्ञासा रखता हूं। क्या आप देखना नहीं चाहते हैं? मुझे आपको चुनौती देने हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करे तो स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, मेरे श्रोता मित्रों, क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं सत्यवादी हूँ? क्या मैं निष्ठावान हूँ? क्या मुझ पर विश्वास किया जा सकता है? क्या मैं शुद्ध हूँ? क्या मैं अश्लील चित्रों और भाषा के इस युग में शुद्ध हूँ? क्या मैं समर्पित हूँ? क्या मैं वास्तव में परमेश्वर को समर्पित संतान हूँ? व्हाइट एल मूडी ने किसी को कहते सुना कि संसार को अभी देखना है कि परमेश्वर एक परिपूर्ण समर्पित मनुष्य के साथ क्या करता है। मेरे प्रियो, मूडी ने उत्तर दिया, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वह मनुष्य होऊंगा। मेरे विचार में मूडी वह मनुष्य था, तथापि अपनी मरण शया पर उसने कहा, संसार को अभी देखना है कि परमेश्वर पूर्ण रूपेण समर्पित मनुष्य के साथ क्या करता है। ओह मेरे मित्रों, हम उस स्थिति में हों कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करे कि हम इस प्यासे संसार को जीवन का जल दे सके। जी हाँ, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, वह आपके जीवन को ढूंढ रहा है। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस स्थिति के व्यक्ति हैं, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात की चुनौती देता है कि हम पवित्र हो जाएं, हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं, उसके डर और भय में अपने जीवन को बिताएं और इस संसार में परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझें और बताएं, ताकि जागृति आ सके, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपके लोगों के बीच में कार्य करना चाहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज आपने इस वचन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है ताप